أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين أما بعد میرے پیارے دوستو میرے بھائیوں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس کارے کرم میں احکام کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں اور ہم ان احکام کو بتا رہے ہیں جو ہمارے ویکتیگت اور ویوہارک جیون کے لیے آوشک ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے پچھلے کارے کرم میں وضو کے بارے میں بات چیت کی، ہم نے یہ بتایا کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے، جن کن اعضاء کو دھلا جاتا ہے، کن انگوں پر مسح کیا جاتا ہے، اور وضو کے لیے کیسے اور کیا کیا کرنا چاہیے۔ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ وضو دو پرکار کا ہوتا ہے، ایک وضو ترتیبی ہوتا ہے، یعنی جیسے کہ ہم اپنے عام جیون میں کرتے ہیں، جیسے کہ نل سے پانی لیا اور وضو کر لیا یا لوٹے سے پانی لیا اور وضو کر لیا، اور دوسرا وضو وہ وضو ہوتا ہے جو التماسی ہوتا ہے، یعنی جس میں ہم سوئم انگوں کو پانی میں ڈبوتے ہیں، پانی کو انگ پر نہیں ڈالتے ہیں۔ ہم اپنے اسی بحث میں کچھ اور باتوں کو بیان کرنے کے بعد وضو جبیرہ اور وضو کی شرطوں کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ وضو کے بارے میں ایک بحث، ایک بات جو نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان، ایشور نہ کرے کہ کسی انسان کے شریر کا کوئی ایسا انگ کٹ جائے جو وضو میں دھویا جاتا ہے یا جس میں وضو پر مسح کیا جاتا ہے، جیسے اگر کسی انسان کے شریر کا ایک ہاتھ کٹ جائے تو وہ وضو کس پرکار کرے گا، اس کے وضو کے لیے کیا بات ہوگی۔ تو اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان کا ہاتھ کوہنی کے نیچے سے کٹ جائے، یہاں پر کوہنی ہے، اس کے نیچے سے کٹ جائے، تو اگر کوہنی کے نیچے سے کٹ گیا ہے تو وضو کرتے سمے اس کو چاہیے کہ وہ جتنا بھاگ بچا ہوا ہے، اگر گٹے سے نیچے کٹا ہے یا بیچ سے کٹ گیا ہے یا جنم سے ہی نہیں تھا، اگر ایسا ہے تو جتنا بھاگ ہے اس کو دھلے گا اور اس کے بعد باقی انگوں کو دھوئے گا اور مسح کرے گا اور وضو کو سماپت کر دے گا۔ لیکن پرشن یہ ہے کہ اگر کسی کا ہاتھ ایسی جگہ سے کٹا ہے، مثلا کوہنی کے اوپر سے کٹ گیا، یہاں سے کٹا ہوا ہے، تو کیا کرے گا؟ تو اگر کوہنی کے اوپر سے کٹ گیا ہے تو اس کے لیے اس ہاتھ کا دھونا واجب نہیں ہے، جب ہے ہی نہیں تو دھوئے گا کیا؟ اس کے لیے آوشک یہ ہے کہ دوسرے حصوں کو دھوئے، دوسرے انگوں کو دھوئے، اس کا مسح کرے اور مسح کرنے کے بعد وضو کو سماپت کر دے۔ اس کے بعد ایک بات یہ آتی ہے کہ اگر کسی انسان کے دونوں ہاتھ، ایشور نہ کرے، کٹ گئے ہیں یا جنم سے ہی نہیں تھے تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ تو یہاں پر بھی وہی بات آتی ہے کہ اگر کوہنی کے نیچے کوئی حصہ رہ گیا ہے، کوئی انگ باقی ہے، تو اس کو دھوئے گا اور اس کے بعد کاریوں کو انجام دے گا، لیکن اگر کوہنی کے اوپر ہی سے رہ گیا ہے تو اس کے لیے ان کو دھونا ضروری نہیں ہے، ان کو نہیں دھوئے گا بلکہ ان کے آگے کے بھاگوں کو انجام دے گا، جیسے کہ چہرے کو دھوئے گا، اس کے بعد وہ مسح کرے گا، اور اگر کٹے ہوئے بھاگ کے ساتھ مسح نہیں کر سکتا ہے تو اس کو لیے آوشک یہ ہے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ کسی دوسرے کی سہایتا لے اور وہ انسان اس کے لیے مسح کا کاریہ انجام دے۔ ایک بات اور یہیں پر آتی ہے کہ اگر کسی انسان کا پیر کٹ گیا ہے، پیر میں ہم کو جیسے ہم نے بتایا کہ پیر کی انگلیوں سے لے کے ابھرے ہوئے حصے تک مسح کرنا واجب ہوتا ہے، اگر کسی انسان کے پیر کا ایسا حصہ کٹ گیا ہے، کچھ بھاگ جیسے پیر کی آگے کی انگلیاں صرف کٹ گئی ہیں، تو مسح کرتے سمے کیا کرے گا؟ تو اس کے لیے آوشک یہ ہے کہ جو بھاگ بچا رہ گیا ہے اس کا مسح کرے گا اور جس نے نہیں ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر اس پرکار کٹ گیا ہے کہ مسح کا کوئی حصہ بچا ہی نہیں ہے تو اس کے لیے آوشک یہ ہے کہ وہ ایک پیر کا مسح کرے گا اور ایک پیر کو، یعنی جو پیر بچا ہوا ہے اس کا مسح کرے گا اور دوسرے کا مسح کرنا اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ इसके बाद बहस आती है हमारे पास, ये वज़ू के बारे में बहस निकल गई, इसके बारे में बहस आती है वज़ू जबीरा की। एक ऐसा शब्द है जिसको हम अपने आम जीवन में और विशेषकर धार्मिक जीवन में बहुत सुनते हैं कि वज़ू जबीरा क्या है, और अक्सर ये प्रश्न भी दिमाग में उठता रहता है कि आखिर ये वज़ू जबीरा है क्या, जबीरा कहते किसको हैं, जबीरे का अर्थ क्या है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं जबीरा किसको कहते हैं। जबीरा किसी ज़ख्म, किसी घाव पर रखने वाली मरहम या किसी टूटे हुए हिस्से के ऊपर रखने जाने वाली पट्टी का नाम है जबीरा। यानी अगर किसी के कोई घाव लग गया है तो उसके ऊपर जो पट्टी लगाई जाती है उसको कहते हैं जबीरा, अगर हाथ टूट गया है तो उसके ऊपर प्लास्टर या जो पट्टी वगैरह लगाई जाती है उसको जबीरा कहा जाता है। अगर किसी इंसान के वुजू के अंगों पर जबीरा हो, यानी क्या मतलब, यानी उसके घाव हो या कोई हिस्सा टूट गया हो, कोई अंग टूट गया हो, तो वो वुजू करते वक्त क्या करे, यहीं पर वुजू जबीरा के अहकाम जो होते हैं वो आके बताते हैं हमको कि अगर किसी इंसान के शरीर के किसी ऐसे अंग पे घाव या टूटापन या ऐसी कोई चीज़ हो जिसको वुजू में धोया या मसह किया जाता है, तो अगर वो इंसान उस घाव पर से उस पट्टी को हटा सकता हो, उस टूटे पर से उस पट्टी को हटा सकता हो और उसके ऊपर पानी डाल सकता हो और इस पानी डालने में उसके लिए कोई हानि ना हो, यानी क्या, यानी पानी डालना उसके ऊपर उसके लिए हानिकारक ना हो, तो उसके लिए आवश्यक ये है कि पहले उस पट्टी को हटाए या उस घाव के ऊपर से उस मरहम को हटाए, हटाने के बाद उसके ऊपर पानी डाले, पानी डालने के बाद बाकी जैसे वज़ू किया जाता है वज़ू कर ले। मान लीजिए किसी इंसान के हाथ के ऊपर घाव था, वहाँ पर उसने पट्टी लगा रखी थी, ऐसे पट्टी लगी हुई। अब अगर इंसान के लिए इस पट्टी को हटाना संभव है, वो पट्टी को हटा सकता है, पट्टी हटाने के बाद उसके ऊपर पानी डाल सकता है, तो उसको चाहिए पट्टी हटाए, पट्टी हटाने के बाद पानी डाले, पानी डालने के बाद इस हाथ को धोए, उसके बाद बाएँ हाथ को धोए और पूरा वज़ू तमाम कर ले। तो ये तो एक सूरत हुई कि यानी इंसान पट्टी हटा सकता है, ज़ख्म पर से, घाव पर से उस मरहम को हटा सकता है और उसके लिए इसमें हटाने में और पानी डालने में कोई हानि भी नहीं है। लेकिन अगर इसके उलट ऐसा हो कि अगर इंसान पट्टी हटाए या उसके ऊपर से वो ज़ख्म पर से मरहम हटाए और उसके ऊपर पानी डाले तो पानी डालना उसके लिए हानिकारक हो, तो ऐसी ऐसी सूरत में क्या करेगा, अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाए तो इंसान क्या करेगा। तो इसके लिए कहा यह गया है कि अगर इंसान के सामने ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि वो हटा ना सकता हो और उनके लिए जो है कोई ऐसा कार्य न कर सकता हो कि जिसके माध्यम से उसको हानि ना पहुँचे, तो उसके लिए आवश्यक ये है कि वो उसी पट्टी के ऊपर कोई पाक कपड़ा रखे, पाक कपड़ा रखने के बाद उसको जो वहाँ से हाथ को फिराए और उसके आसपास का जो हिस्सा है उसको धो ले, उसके बाद जितने जो हिस्से बचते हैं, जो अंग बचते हैं, उनको उसी प्रकार अंजाम दे, उसी प्रकार धोए, उसी प्रकार मसा करे जैसे आम वज़ू में किया जाता है। दूसरी बात ये होती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान के शरीर पर घाव है, मान लीजिए चेहरे पर घाव है, घाव खुला हुआ है, कोई मरहम पट्टी भी नहीं लगी हुई है, और ऐसे ऐसी स्थिति में क्या करे, क्या उसको धोए या ना धोए, जबीरा वज़ू करे या आम वज़ू करे। तो ऐसी सूरत में कहा यह जाता है, मसला ये है कि अगर उस घाव के ऊपर पानी डालना हानिकारक ना हो और उसको पानी से धोया जा सकता हो, तो आवश्यक ये है, ज़रूरी ये है, अनिवार्य ये है कि इंसान उस घाव के ऊपर पानी डाले, पानी डालने के बाद वज़ू का पानी डाले, पानी डालने के बाद बाकी अंगों को आम वज़ू की तरह धोकर समाप्त करे। लेकिन अगर नहीं हटा सकता, कि कभी कभी ऐसा होता है घाव ऐसा है कि उसके ऊपर पानी नहीं डाला जा सकता, पानी डालना हानि का कारण बनता है, हानिकारक होता है उसके लिए, तो उसके लिए आवश्यक ये है कि उस घाव के आसपास के जो भाग हैं उनको पानी से धोए और वो जो घाव है उसके ऊपर एक हल्का सा कपड़ा रखे, कपड़ा रखने के बाद उस कपड़े के ऊपर हाथ को फिराए और इस प्रकार अपने वज़ू को आगे बढ़ा दे। तो ये थी वज़ू जबीरा के बहस। उसके बाद हम फिर पलटते हैं अपनी उस बहस की तरफ जिसमें हमने स्टार्ट किया था वज़ू के बारे में। वज़ू का हमने बताया वज़ू दो प्रकार का होता है, या इरतमासी होता है या तरतीबी होता है। फिर उसके बाद वज़ू जबीरा की बहस निकली। अब वज़ू की कुछ शर्तें होती हैं, यानी क्या मतलब, यानी मतलब ये है कि अगर वज़ू करते समय इन शर्तों का ध्यान रखा जाए, इन शर्तों के अनुसार वज़ू को अंजाम दिया जाए तो उसका वज़ू सही है, और अगर इन शर्तों का ध्यान नहीं रखा गया है, जिस टाइम इंसान वज़ू कर रहा था, जिस समय इंसान वज़ू कर रहा था उस टाइम इनका ध्यान नहीं रखा या इन शर्तों को तोड़ दिया, तो उसका वज़ू भी सही नहीं होगा। वज़ू में कई प्रकार की शर्तें होती हैं। पहली शर्त वो होती है जो वज़ू के पानी और उसमें प्रयोग किए जाने वाले बर्तन से संबंधित होती है। दूसरी शर्तें वो होती हैं जो वज़ू के अंगों के बारे में होती हैं, और तीसरी शर्त ये होती है जो किस प्रकार वज़ू किया जाए इसके बारे में होती है। तो सबसे पहली शर्त जो वज़ू के पानी और उसके बर्तन के मामले में होती है, तो कहा यह गया है, आदेश ये दिया गया है, मसला ये है कि अगर इंसान वज़ू करना चाहता है तो उसका पानी, वो जल जो उपयोग कर रहा है वो पवित्र हो। यानी क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर इंसान अपवित्र जल से वज़ू कर रहा है, नजिस पानी से वज़ू कर रहा है, तो उसका वज़ू सही नहीं होगा। अगर ऐसा किया उसने, गलत है उसका वज़ू। और दूसरी बात यह है कि जिस पानी को वो उपयोग में ला रहा है वो पानी मुतलक हो। क्या मतलब? यानी शुद्ध हो, यानी उसको पानी कहा जाता हो, मुजाफ ना हो। मुजाफ ना हो यानी क्या मतलब? यानी किसी चीज़ से लिया ना गया हो, यानी किसी चीज़ का रस ना हो, या कोई चीज़ इसमें इतनी ना मिलाई गई हो कि उसको पानी ना कहा जाए। जैसे पानी, हमारे पास पानी होता है एक गिलास में, हम उसमें शक्कर मिला देते हैं, शरबत कहा जाता है। तो जैसे ही उसको शरबत कहा गया वो पानी मुजाफ हो गया, उसमें वज़ू सही नहीं है। अब अगर कोई इंसान वज़ू करते समय अपवित्र या मुजाफ पानी का उपयोग करता है तो उसका वज़ू सही नहीं होगा। और दूसरी शर्त ये है कि जिस पानी से वज़ू किया जा रहा है वो मुबाह हो। इसका क्या मतलब है? यानी मुबाह होने का मतलब यह है कि गस्बी ना हो। अब ये और टफ हो गया। गस्बी ना हो क्या मतलब? गस्बी का मतलब यह है कि छीना ना हुआ ना हो, झपटा हुआ ना हो, चोरी किया हुआ ना हो, यानी इस प्रकार से किसी अनाधिकृत प्रकार से उस जल को इस्तेमाल ना किया गया हो, उसको हथियाया ना गया हो। अगर इंसान मुबाह पानी नहीं है उससे वज़ू कर रहा है तो उसका वज़ू सही नहीं होगा। और तीसरी बात यह है कि वो पानी जिसके बारे में हमको पता नहीं है कि इसका जो मालिक है वो राज़ी है या नहीं, वो वज़ू चाहता है कि नहीं चाहता है। तो अगर इंसान किसी ऐसे पानी से वज़ू करना चाहता है जिसके बारे में पता ना हो कि वो राज़ी है या नहीं है, तो उस पानी से भी वज़ू नहीं कर सकता। या इसी प्रकार किसी ऐसे पानी से जहाँ मसलन हम कहीं जा रहे हैं, किसी के घर के सामने नल लगा हुआ, हमको पता है कि वो इंसान नहीं चाहता कि हम उसके नल से पानी लें, हम पानी लोटे में भर के लेके चले आते हैं, किसी चीज़ में भर के लेके चले आते हैं और उससे वज़ू करते हैं, तो अगर इस प्रकार का वज़ू किया जा रहा है तो इसको कहा जाएगा कि पानी मुबाह नहीं था, और जब मुबाह नहीं था तो उसका वज़ू भी सही नहीं होगा। तो ये पानी के संबंध में हुई। दूसरी बात, वो बर्तन जिसके अंदर पानी रखा जा रहा है उसकी भी कुछ शर्तें हैं। उस बर्तन के बारे में भी कहा गया है कि वो बर्तन मुबाह हो, यानी क्या मतलब? किसी से हथियाया हुआ ना हो, और वो बर्तन जो जिसमें पानी रखा जा रहा है वज़ू का, वो सोने या चांदी का बर्तन ना हो। अगर सोने या चांदी के बर्तन में रखे हुए पानी से इंसान वज़ू करता है तो उसका वज़ू सही नहीं होगा, बल्कि बातिल है। अब इसके बाद के प्रोग्राम में हम उन शर्तों को बयान करेंगे जो वज़ू से संबंधित होती हैं, वज़ू के अंगों से संबंधित होती हैं, और वज़ू किस प्रकार करना चाहिए उससे संबंधित उनको बयान करेंगे। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलीयकल फ़रज। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।